नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैक्सिम लापांग की डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग हैंड्स ऑन एक तकनीकी अभ्यास केंद्रित पुस्तक है, जो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को बुनियादी सिद्धांतों से आधुनिक डीप आरएल विधियों तक क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करती है। इसका तीसरा संस्करण क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क्स, पॉलिसी ग्रेडियंट और प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन जैसी प्रमुख तकनीकों के साथ रीइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, म्यू जीरो और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे नए विषय भी शामिल करता है। पुस्तक का उद्देश्य केवल एल्गोरिथमों की परिभाषाएं देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि एक एजेंट वातावरण से पुरस्कार संकेत लेकर निर्णय नीति कैसे सीखता है। ओपनएआई जिम और पाइटॉच आधारित उदाहरणों के माध्यम से पाठक ग्रिड वर्ल्ड गेम्स, स्टॉक ट्रेडिंग और वेब नेविगेशन जैसे परिवेशों में मॉडल बनाना सीखते हैं। यह आरएल का बिल्कुल प्रारंभिक गणित विहीन परिचय नहीं है, क्योंकि इसमें पाइथन, कैलकुलस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की कार्यकारी समझ अपेक्षित है। इसकी केंद्रीय विशेषता सिद्धांत कोड और प्रयोग के बीच सीधा संबंध स्थापित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पुरस्कार आधारित सीखने की बुनियाद और क्यू लर्निंग की भूमिका। पुस्तक रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को ऐसी समस्या के रूप में रखती है जिसमें एजेंट किसी वातावरण में कार्रवाई करता है, नई अवस्था देखता है और पुरस्कार प्राप्त करता है। लक्ष्य किसी एक निर्णय का तत्काल लाभ नहीं, बल्कि समय के साथ मिलने वाले कुल प्रतिफल को बढ़ाने वाली नीति सीखना है। यह दृष्टि पर्यवेक्षित अधिगम से अलग है, क्योंकि यहां सही उत्तरों का तैयार डेटासेट उपलब्ध नहीं होता। एजेंट को परीक्षण, त्रुटि और विलंबित पुरस्कारों के आधार पर व्यवहार सुधारना पड़ता है। इसी आधार पर क्यू लर्निंग का महत्व स्पष्ट होता है। क्यू मान किसी अवस्था में किसी कार्रवाई की अपेक्षित दीर्घकालिक उपयोगिता का अनुमान देते हैं। एजेंट इन अनुमानों को बार बार मिले अनुभव के आधार पर अद्यतन करता है। पुस्तक छोटे और स्पष्ट वातावरणों से शुरुआत करके अवस्था, कार्रवाई, पुरस्कार, एपिसोड, डिस्काउंटिंग और खोज बनाम उपयोग जैसे विचारों को व्यावहारिक संदर्भ देती है। यह क्रम आवश्यक है, क्योंकि बाद के डीप मॉडल वास्तव में इन्हीं मूल्यों या नीतियों के अनुमान को न्यूरल नेटवर्क से विस्तृत करते हैं। पाठक यह भी समझता है कि आरएल में असली कठिनाई केवल अधिक पुरस्कार पाना नहीं है, बल्कि अपर्याप्त जानकारी में उपयोगी खोज करते हुए भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय अनुमान बनाना है। दूसरा, डीप क्यू नेटवर्क्स द्वारा बड़े अवस्था स्थानों में मूल्य अनुमान। पारंपरिक क्यू लर्निंग छोटी गिनने योग्य अवस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकती है, पर चित्रों, सेंसर संकेतों या जटिल खेल स्थितियों जैसे बड़े अवस्था स्थानों में हर अवस्था कार्रवाई जोड़ी को तालिका में रखना संभव नहीं रहता। पुस्तक डीप क्यू नेटवर्क्स को इस सीमा के व्यावहारिक समाधान के रूप में समझाती है। यहां न्यूरल नेटवर्क क्यू तालिका का स्थान लेता है और वर्तमान अवस्था को लेकर विभिन्न कार्रवाइयों के क्यू मानों का अनुमान करता है। यह परिवर्तन क्षमता बढ़ाता है, लेकिन प्रशिक्षण को अस्थिर भी बना सकता है। लगातार जुड़ा हुआ अनुभव डेटा बदलते लक्ष्य और नेटवर्क के अपने अनुमानों पर निर्भर अद्यतन त्रुटियों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अनुभव पुनरावृत्ति और टारगेट नेटवर्क जैसी तकनीकें महत्वपूर्ण बनती है। पुनरावृत्ति बफर पुराने अनुभवों को संग्रहित कर अपेक्षाकृत विविध नमूनों पर प्रशिक्षण संभव बनाता है, जबकि अलग टारगेट नेटवर्क लक्ष्य मानों को कुछ समय तक स्थिर रखता है। पुस्तक का हैंड्स ऑन ढांचा इन उपायों को केवल नाम के रूप में नहीं छोड़ता, बल्कि एजेंट निर्माण और प्रशिक्षण चक्र के हिस्से के रूप में रखता है। इससे पाठक समझ सकता है कि डीप आरएल में बेहतर आर्किटेक्चर पर्याप्त नहीं है, डेटा संग्रह, नमूना चयन और स्थिर लक्ष्य भी सीखने की गुणवत्ता तय करते हैं। तीसरा, पॉलिसी ग्रेडियंट और सतत नियंत्रण में पीपीओ का व्यावहारिक महत्व। हर आरएल समस्या को क्यू मानों के अधिकतमकरण से सहजता से हल नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब कार्रवाई स्थान सतत हो, जैसे रोबोटिक नियंत्रण में गति या बल का चयन। पुस्तक पॉलिसी ग्रेडियंट विधियों के माध्यम से एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इनमें एजेंट मूल्य तालिका से सर्वोत्तम कार्रवाई चुनने के बजाय सीधे अपनी नीति के पैरामीटरों को बेहतर बनाता है। नीति किसी अवस्था के लिए कार्रवाई या कार्रवाई वितरण उत्पन्न करती है और प्राप्त प्रतिफलों के आधार पर उसके पैरामीटर बदले जाते हैं। यह ढांचा लचीला है, लेकिन ग्रेडियंट अनुमान में बहुत अधिक विचरण और अस्थिर अद्यतनों की समस्या ला सकता है। इसी पृष्ठभूमि में प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन अर्थात पीपीओ का महत्व उभरता है। पीपीओ नीति को एक ही चरण में अत्यधिक बदलने से रोकने के लिए नियंत्रित अद्यतन का सिद्धांत अपनाता है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि एजेंट हाल में सीखे उपयोगी व्यवहार को अचानक नष्ट किए बिना क्रमिक सुधार करे। पुस्तक सतत नियंत्रण और आधुनिक पॉलिसी आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से यह अंतर स्पष्ट करती है कि आरएल में प्रदर्शन केवल पुरस्कार फंक्शन पर निर्भर नहीं होता। अद्यतन की सीमा, नमूनों की दक्षता और प्रशिक्षण की स्थिरता अक्सर उतनी ही निर्णायक होती है। चौथा, गेम्स से स्टॉक ट्रेडिंग और वेब एजेंटों तक अनुप्रयोगों की सीमा। पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को केवल गेम खेलने वाली तकनीक के रूप में सीमित नहीं करती। उदाहरणों का विस्तार ग्रिड परिवेशों और खेलों से स्टॉक ट्रेडिंग, डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन तथा वेब ब्राउजर नेविगेशन तक जाता है। इन क्षेत्रों का चयन यह दिखाने के लिए उपयोगी है कि आरएल समस्या का मूल ढांचा अलग अलग हो सकता है, फिर भी एजेंट, अवस्था, कार्रवाई, पुरस्कार और संक्रमण की भाषा कई जगह लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए गेम में पुरस्कार स्कोर या जीत हो सकता है, जबकि ट्रेडिंग में जोखिम समायोजित लाभ की परिभाषा अधिक उपयुक्त हो सकती है। वेब नेविगेशन में एजेंट को पृष्ठ की स्थिति समझकर अगले क्लिक या कदम का चुनाव करना पड़ता है। फिर भी पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से एक आवश्यक सावधानी भी सामने रखती है। वास्तविक दुनिया में पुरस्कार का डिजाइन सरल नहीं होता। गलत पुरस्कार संकेत एजेंट को ऐसा व्यवहार सिखा सकता है जो अंक तो बढ़ाए पर वास्तविक उद्देश्य को नुकसान पहुंचाए। वित्तीय डेटा में समयानुक्रम, लागत और बदलती बाजार स्थितियां भी मूल्यांकन को कठिन बनाती है। इसलिए इन उदाहरणों का सबसे उपयोगी पाठ यह है कि एल्गोरिदम चुनने से पहले समस्या को सही मार्कों निर्णय प्रक्रिया के रूप में गढ़ना आवश्यक है। वातावरण और पुरस्कार की परिभाषा मॉडल की सफलता की बुनियाद है। अंत में आरएलएचएफ, म्यूजीरो और ट्रांसफॉर्मर्स से आधुनिक आरओई की विस्तृत दिशा। तीसरे संस्करण में रीइन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। म्यूजीरो और ट्रांसफॉर्मर्स का समावेश पुस्तक को पारंपरिक दीप आरएल पाठ्यक्रम से आगे ले जाता है। आरएलएचएफ उस स्थिति को संबोधित करता है जहां वांछित व्यवहार को एक सरल स्वचालित पुरस्कार नियम में लिखना कठिन होता है। मानव प्राथमिकताओं या प्रतिक्रियाओं से पुरस्कार मॉडल अथवा सीखने का संकेत तैयार किया जा सकता है, जिससे एजेंट का अनुकूलन मानव अपेक्षाओं के अधिक निकट लाने का प्रयास करता है। यह उपयोगी दिशा है, पर मानव फीडबैक की गुणवत्ता, पक्षपात, लागत और पुरस्कार मॉडल की सीमाएं भी महत्वपूर्ण रहती हैं। म्यूजीरो मॉडल आधारित योजना की ओर संकेत करता है, जहां एजेंट वातावरण के हर नियम को स्पष्ट रूप से जाने बिना भी निर्णय के लिए उपयोगी आंतरिक पूर्वानुमान सीख सकता है। दूसरी ओर ट्रांसफॉर्मर्स अनुक्रमों और व्यापक संदर्भ को संभालने वाली संरचनाओं की प्रासंगिकता दिखाते हैं। इन विषयों को जोड़कर पुस्तक यह संकेत देती है कि आधुनिक आरएल केवल प्रतिक्रिया आधारित नियंत्रण नहीं रहा, इसमें प्रतिनिधित्व अधिगम, योजना, मानव प्राथमिकताएं और बड़े न्यूरल आर्किटेक्चर परस्पर जुड़े हैं। फिर भी इन उन्नत विधियों को आधारभूत क्यू लर्निंग, मूल्य अनुमान और नीति अनुकूलन की समझ के विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे उन्हीं बुनियादी समस्याओं के अधिक जटिल समाधान है। निष्कर्ष में, डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग हैंड्स ऑन उन मशीन लर्निंग इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डेटा वैज्ञानिकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को पढ़ने के साथ लागू भी करना चाहते हैं। पाठक को पाइथन, बुनियादी कैलकुलस, मशीन लर्निंग और विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क प्रशिक्षण की कुछ परिचितता होनी चाहिए। पूर्ण शुरुआती पाठक के लिए पहले डीप लर्निंग की आधारभूत अवधारणाएं समझना उपयोगी रहेगा, क्योंकि पुस्तक आरएल की मूल बातें समझाते हुए भी व्यावहारिक कार्यान्वयन की गति बनाए रखती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह एल्गोरिदमों को अलग अलग गणितीय वस्तुओं की तरह प्रस्तुत नहीं करती। क्यू लर्निंग से डीप क्यू नेटवर्क्स, फिर पॉलिसी ग्रेडियंट और पीपीओ तक का क्रम बताता है कि हर नई विधि किस व्यावहारिक सीमा, जैसे बड़े अवस्था स्थान, सतत कार्रवाई या प्रशिक्षण अस्थिरता को संबोधित कर दिए। ओपनएआई जिम और पाइटॉर्च के साथ विविध परिवेशों का प्रयोग पाठक को एजेंट डिजाइन, पुरस्कार निर्धारण, अनुभव संग्रह और मूल्यांकन की वास्तविक इंजीनियरिंग चुनौतियों की निकट लाता है। इसी कारण यह केवल सैद्धांतिक आरएल पुस्तकों से अलग दिखती है। तीसरे संस्करण में आरएलएचएफ, म्यूजीरो और ट्रांसफॉर्मर्स का समावेश इसे आधुनिक परिदृश्य से जोड़ता है, बिना बुनियादी अवधारणाओं को छोड़े, जो पाठक कोड के माध्यम से आरएल प्रयोग करना, प्रशिक्षण की अस्थिरता को समझना और उपयोग मामले के अनुसार विधि चुनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक ठोस संदर्भ और कार्यपुस्तिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैक्सिम लापान, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।